ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार के लिए सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण आज लुम्बिनी में शुरू हुआ। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास में नेपाल की श्रीजंग बटालियन और भारतीय सेना की 11वीं गोरखा राइफल भाग ले रही हैं। इससे दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध, आपसी विश्वास और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। संयुक्त अभ्यास का 17वां संस्करण पिछले साल भारत के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वर्ष 2024 भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 का पहला दिन एक्सपोसेट के प्रक्षेपण के साथ शुरू हुआ और फिर आदित्य L1 मिशन को उसकी लक्षित कक्षा में स्थापित किया गया। इसके बाद अगस्त में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया और इसरो ने कल रात स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पीडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि डॉकिंग तकनीक के लिए स्पीडेक्स मिशन भारत द्वारा किए गए पहले प्रयोगों में से एक है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता, प्रगति और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में खड़ा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ मिलकर इस क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी करने की वचनबद्धता दोहराई। क्वाड की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर क्वाड के विदेश मंत्रियों के एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि आपदा से निपटने की आपातकालीन व्यवस्था का कार्य अब एक पूर्ण साझेदारी में परिवर्तित हो चुका है। वक्तव्य में कहा गया है कि क्वाड के देश अब हिंद प्रशांत के साझेदारों के साथ एकजुट होकर काम करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार यमन में रहने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा के मामले में हर संभव मदद कर रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार को इस घटना की जानकारी है। उन्होंने कहा कि प्रिया का परिवार उचित विकल्पों पर विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुश्री प्रिया केरल की रहने वाली हैं और यमन में हत्या के मामले में दोषी हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नकली दवाइयों के खिलाफ कार्रवाई करके 6,60,00,000 रुपए की दवाई जब्त कर ली है। मंत्रालय के अधीन केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और औषधि नियंत्रण प्रशासन ने कोलकाता में एक संयुक्त छापेमारी की। छापेमारी में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। भारत में कानूनी ढांचे को आधुनिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए इस वर्ष कई महत्वपूर्ण विधायी सुधार किए गए। इन सुधारों का उद्देश्य पोत निर्माण, बैंकिंग, रेलवे, विमानन और अन्य क्षेत्रों को मजबूत करना है। वर्ष 2024 में 100 साल पुराने कानूनों के स्थान पर कई नए विधेयक लाए गए। इनमें नए भारतीय आपराधिक कानून, विमानन अधिनियम 1934 और समुद्री माल ढुलाई अधिनियम 1925 के स्थान पर लाए गए नए विधेयक शामिल हैं। दुनिया भर में लोग वर्ष 2024 को विदाई दे रहे हैं और नववर्ष 2025 का स्वागत कर रहे हैं। विश्व के विभिन्न शहरों में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप नववर्ष का उत्साह देखने को मिल रहा है। न्यूजीलैंड नववर्ष का जश्न मना रहा है। शहर के प्रतिष्ठित स्काई टावर पर पारंपरिक आतिशबाजी का प्रदर्शन किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने भी उत्साह के साथ वर्ष 2025 में प्रवेश किया है। पारंपरिक आतिशबाजी देखने के लिए सिडनी हार्बर में बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। इधर भारत में भी नववर्ष के स्वागत के लिए लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। नए साल के शांतिपूर्ण समारोह और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जगहों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। हॉकी इंडिया लीग में आज राउरकेला में दिल्ली एसजी पाइपर्स का मुकाबला हैदराबाद तूफान्स से होगा। ये मैच भारत समयानुसार रात 8:15 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कोहरा छाए रहने की अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में भी घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।